रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने 4 दिवसीय चीन दौरे पर आज पहुंचे बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ भेंट वार्ता होगी कल। स्थानीयतः उपनिर्वाचन अंतर्गत 38 स्थानों के परिणाम हुए सार्वजनिक। गर्भाशय के कैंसर पर रोकथाम के लिए 2.5 लाख महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने की स्वास्थ्य मंत्रालय की है योजना। और अफ्रीकी देश गिनी में फुटबॉल खेल के दौरान मची भगदड़ में 56 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली 4 दिवसीय चीन भ्रमण के क्रम में आज बीजिंग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ओली को बीजिंग स्थित बीजिंग कैपिटल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वैदेशिक मामला के उपमंत्री शुन बेईदोंग ने स्वागत किया। चीन के प्रधानमंत्री ली छियांग के मैत्रीपूर्ण आमंत्रण पर प्रधानमंत्री ओली आज बीजिंग पहुंचे हैं। भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री ओली कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भेंटवार्ता करेंगे, ये जानकारी परराष्ट्र मंत्रालय ने दी। इसी तरह प्रधानमंत्री ओली अपने चीनी समकक्षी ली से भेंटवार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ओली से चीन के राष्ट्रीय जन कांग्रेस के स्थायी समिति के अध्यक्ष झाओ लेजी की भी भेंट की तालिका है। भ्रमण के दरमियान प्रधानमंत्री ओली पेकिंग विश्वविद्यालय में संबोधन भी करेंगे। इसी तरह बीजिंग स्थित नेपाली राज दूतावास, चाइना काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के संयुक्त आयोजन में होने वाले नेपाल चीन व्यापार मंच को भी प्रधानमंत्री ओली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ओली के नेतृत्व वाला प्रतिनिधि मंडल इसी मार्ग शीर्ष 20 गते को स्वदेश वापस लौटेगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के चीन भ्रमण के दौरान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI क्रियान्वयन योजना में कुछ संशोधन सहित हस्ताक्षर करने की नेपाल की तैयारी है। BRI क्रियान्वयन योजना नाम के समझौते के सवाल पर नेपाल सरकार ने एक कार्यदल का गठन किया है। कार्यदल में प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार विष्णु रिमाल, नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा और पूर्व अर्थमंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा शामिल है। BRI फ्रेमवर्क नेपाल ने सन 2017 में प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उनके दैनिक प्रशासनिक कार्यों को संभालने की जिम्मेदारी उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह को सौंपी है। राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति पौड़ेल ने प्रधानमंत्री की सिफारिश पर नेपाल के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री ओली की अनुपस्थिति में उनके द्वारा किए जाने वाले दैनिक प्रशासनिक कार्यों को संभालने के लिए उप प्रधानमंत्री सिंह को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल को सौंपी है। अध्यक्ष ओली ने अपने चीन दौरे की अवधि के लिए पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल को सौंपी है, ये जानकारी एमाले प्रचार विभाग के प्रमुख राजेन्द्र गौतम ने दी। स्थानीय तहों के रिक्त 41 पदों के लिए जारी उपनिर्वाचन अंतर्गत कल रविवार को हुए मतदान के अब तक 38 स्थानों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें पालिका प्रमुख या अध्यक्ष की एक सीट नेकपा एमाले और एक सीट नेकपा माओवादी केंद्र के खाते में आई है। वहीं उप प्रमुख या उपाध्यक्ष सीटों में से 2 सीटों पर माओवादी केंद्र ने जीत दर्ज की है तो 1 सीट पर एमाले को जीत मिला है, जबकि विभिन्न वार्ड अध्यक्ष सीटों में से नेपाली कांग्रेस को 16, माओवादी केन्द्र को 6, एमाले को 5, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल को 2 और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली है। दोलखा की गौरी शंकर गांवपालिका उपाध्यक्ष, हुमला की सरकेगाड़ गांवपालिका उपाध्यक्ष और उदयपुर की बेलका नगरपालिका वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष पद की मतगणना जारी है। इन तीनों स्थानों के नतीजे भी आज ही देर रात तक आ चुकने का अनुमान किया जा रहा है, ये बात आयोग की प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्याल ने दी। कीर्तिपुर नगरपालिका प्रमुख पद के दोलखा की गौरी शंकर गांवपालिका उपाध्यक्ष की उम्मीदवार माओवादी केंद्र को नीम लेकी शेरपा 380 मतों के साथ आगे हैं। वहीं उनकी प्रतिस्पर्धी एमाले की उमे लुंगेली मगर सिरपा 1013 मतों के साथ दूसरे स्थान पर है। हुमला की सरकेगढ़ गांव पालिका के उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार माओवादी केंद्र की देवकी तिमल सिन्हा 706 मतों के साथ आगे हैं। वहीं कांग्रेस की सविता बुढ़ा के खाते में अब तक 493 मत हैं। उदयपुर की बेलका नगर पालिका वार्ड नंबर 9 की मतगणना आज शाम 5 बजे से शुरू हुई थी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
भाउजू दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते भाउजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ भाउजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटीसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अब कहाँ और कौन हुए निर्वाचन में? मोरंगी ग्राम स्थान गांव पालिका अध्यक्ष पद पर माओवादी केंद्र के नवो नारायण माझी 6969 मतों के साथ विजयी हुए हैं, तो उनके निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेस के बलराम सरदार थारू को 5333 मत प्राप्त हुए हैं। इसी तरह विभिन्न स्थानों में विभिन्न पार्टियों के और स्वतंत्र उम्मीदवार विजयी हुए, जिनमें काठमांडू की कीर्तिपुर नगर पालिका के प्रमुख पद पर नेपाली कांग्रेस के कृष्णमान डंगोल ने 5304 मत प्राप्त कर विजयी हुए हैं। इसी तरह दैलेख की महाबू गांव पालिका अध्यक्ष पद पर एमाले के जंग बहादुर शाही, जाजरकोट की नलगाड़ नगर पालिका के उप प्रमुख पद पर माओवादी के देविका लामी झा ने, रुकुम पूर्व की पुथा उत्तर गंगा गांव पालिका के उपाध्यक्ष पद पर माओवादी केंद्र के नरपुर बुढ़ा, बाजुरा की स्वामी कार्तिक खापड़ गांव पालिका के उपाध्यक्ष पद पर एमाले की सुलोचना कुमारी भंडारी विजयी हुए हैं। इसी तरह तापले जुंग की सिरीजंगा गांव पालिका वार्ड नंबर 3 में एमाले की कुमारी शवादेन, झापा की कनकाई नगर पालिका वार्ड नंबर 6 में स्वतंत्र उम्मीदवार लक्ष्मी प्रसाद ओली, तेरथुम की लाली गुरास नगर पालिका 8 में कांग्रेस के नागेंद्र लिंबू, सुनसरी की गढ़ी गांव पालिका 6 में कांग्रेस के तेतर साहू, ओखलडुंगा की मोलुंग गांव पालिका 5 में एमाले का गंगा बहादुर तामांग, उदयपुर की त्रियुगा नगर पालिका 12 में माओवादी केंद्र के नवीन कुमार वांतवा राई, सप्तरी की डाकनेश्वरी नगर पालिका 1 में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के धीरेन्द्र कुमार शाह, डाकनेश्वरी 4 में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के ही देवेन्द्र प्रसाद यादव, धनुषाधाम नगर पालिका 1 में माओवादी केंद्र के सुनील कापड़ केवट, महोतरी की रामगोपालपुर नगर पालिका 2 में एमाले के शकीबुल खां, रौथट के ईश्वरनाथ नगर पालिका 7 में कांग्रेस के शेख अब्दुल खलीक, गढ़ीमाई नगर पालिका 8 एकीकृत समाजवादी के बजरंगी प्रसाद यादव, रौथट की ही राजपुर नगर पालिका 6 में कांग्रेस के शमसे आलम, नुआकोट की ककनी गांव पालिका 2 में माओवादी केंद्र के कृष्ण घिमिरे, काठमांडू महानगर पालिका 16 में रोजिना रासपा की रोजिना श्रेष्ठ विजयी हुई है। इसी तरह काठमांडू के कीर्तिपुर नगर पालिका में वार्ड नंबर 4 में कांग्रेस के राजेन्द्र बानिया, मकवानपुर की हेटौड़ा उप महानगर पालिका 12 में कांग्रेस के अर्जुन प्रसाद तिवारी, गोरखा की गोरखा नगर पालिका 5 में माओवादी के विष्णु बहादुर मगर, गुलमी की मुसीकोट नगर पालिका 1 में कांग्रेस के आनंद श्रेष्ठ, कपिलवस्तु की सुदोधन गांव पालिका 1 में एमाले के मोहम्मद ताहिर मुसलमान, रोलपा की रुंटी घटी गांव पालिका 4 में कांग्रेस के भूपी मणि पुन मगर, बर्दिया की ठाकुर बाबा गांव पालिका 4 में कांग्रेस की उम्मीदवार अमीन थारू, डोलपा की त्रिपुरा सुंदरी नगर पालिका 5 में माओवादी के नरबहादुर झांकरी ने जीत दर्ज की है। इसी तरह कालीकोट की तिला गुफा नगर पालिका 4 में नेपाल मजदूर किसान पार्टी के खड़गराज शाही, जाजरकोट की कुसे गांव पालिका 7 में कांग्रेस के खम्ब बहादुर सिंह, दैलेख की दुल्लू नगर पालिका 13 में एमाले के लाल बहादुर शाही, रुकुम पश्चिम की सानीभेरी गांव पालिका पाँच के कांग्रेस के मोतीराम खत्री, बाझांग की सुरमा गांव पालिका चार में कांग्रेस के धीरेन्द्र पुजारा, डोटी की पूर्वी चौकी गांव पालिका छह में कांग्रेस के मोहन थापा विजयी हुए हैं। दूसरी तरफ दारचूला की दुहू गांव पालिका पांच में कांग्रेस के धन सिंह कुंवर 376 मत सहित विजयी हुए हैं और कंचनपुर की भीमदत्त नगर पालिका छह में कांग्रेस के प्रकाश चंद ने जीत हासिल की है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 2,50,000 महिलाओं का परीक्षण करेगा। मंत्रालय के तहत परिवार स्वास्थ्य कल्याण महाशाखा देश भर में 30 से 49 वर्ष की महिलाओं का परीक्षण करेगी ताकि यह देखा जा सके कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर है या नहीं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने कहा कि बीते श्रावण 27 गते घोषणा की गई योजना एवं प्राथमिकता में महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल और स्तन कैंसर की रोकथाम के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सन 2022 में नेपाल में सर्वाइकल कैंसर के 2,169 मामले और स्तन कैंसर के 2,255 नए मामले पाए गए थे। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफ्रीकी देश साउथ गिनी में एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में 56 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्टर्स के मुताबिक दक्षिणी गिनी के दूसरे सबसे बड़े शहर एंजेरा कोरे में खेले जा रहे फुटबॉल टूर्नामेंट में एक मैच के दौरान दोनों टीमों के फैंस के बीच भयानक टकराव हो गया जिसके कारण स्टेडियम में भगदड़ मच गई। इस टकराव और उसके बाद मची भगदड़ के कारण 56 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल भी हो गए। साउथ गिनी की सरकार ने सोमवार 2 दिसंबर को जानकारी दी कि फुटबॉल मैच के दौरान हुए हादसे में अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है जबकि दर्जनों अभी भी अस्पताल में भर्ती है जिनका इलाज चल रहा है। ये विवाद एक फैसले को लेकर हो गया था जिसके बाद दोनों टीमों के फैन आपस में टकरा गए थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने 4 दिवसीय चीन दौरे पर आज पहुंचे बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ भेंटवार्ता होगी कल। स्थानीयतः उपनिर्वाचन अंतर्गत 38 स्थानों के परिणाम हुए सार्वजनिक। गर्भाशय के कैंसर पर रोकथाम के लिए 2.5 लाख महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करने की स्वास्थ्य मंत्रालय की है योजना। और अफ्रीकी देश गिनी में फुटबॉल खेल के दौरान मची भगदड़ में 56 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।